بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرباشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, आज बुधवार है, शनिवार माह की 30, सफर की 24 और सितंबर की 21 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आशा की किरण और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। सुप्रीम लीडर का कहना है कि दुश्मन भी जानता है कि ईरान को आंखें नहीं दिखाई जा सकती। राष्ट्रपति का कहना है कि वार्ता और साजिश तेहरान को स्वीकार नहीं है। ईरान में होने वाले हिंसक प्रदर्शनों की सच्चाई सामने आने लगी। भारत, यूएई और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई का कहना है कि पवित्र प्रतिरक्षा के तथ्यों से नौजवानों को आगाह करना चाहिए। 8 साल तक चलने वाले पवित्र डिफेंस के कमांडरों और बहादुर सिपाहियों ने सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। पवित्र प्रतिरक्षा की सालगिरह के मौके पर मनाए जाने वाले हफ्ते के अवसर पर कमांडरों और बहादुर सिपाहियों, इसी तरह शहीदों के परिजनों ने सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। सुप्रीम लीडर का कहना था कि गुजरते वक्त के साथ पवित्र डिफेंस के नाते पवित्र डिफेंस के नए पहलू सामने आ रहे हैं। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध में ईरान के मुकाबले में विश्व साम्राज्यवाद था जो सद्दाम की हर तरह मदद कर रहा था। सुप्रीम लीडर ने कहा कि पवित्र प्रतिरक्षा की वास्तविकताओं को दुनिया वालों और नई पीढ़ियों को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान पर थोपा गया युद्ध कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि सद्दाम की पीठ पर विश्व साम्राज्यवाद का हाथ था। उन्होंने कहा कि ईरान की क्रांतिकारी और इस्लामी व्यवस्था पर साम्राज्यवादी सरकारों का हमला अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि ये सरकारें ईरान की इस्लामिक क्रांति से बहुत नाराज थीं। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियां समझ रही थी कि यह क्रांति केवल साम्राज्यवादी शक्तियों की एक अस्थायी राजनीतिक पराजय नहीं है, बल्कि इस्लामी क्रांति वर्चस्ववादी व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा थी। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीकी अधिकारियों के लिए यह बात असहनीय थी कि ईरान की जनता इस दौर की अमरीका जैसी बड़ी शक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात करे। इसीलिए अमरीका ने ईरानी जनता से प्रतिशोध लेने की ठान ली और उसने तबस के नाकाम हवाई हमले द्वारा विद्रोह कराने और ईरान के अंदर राष्ट्र को उकसाने जैसी कार्रवाइयां अंजाम दी, लेकिन जब उसको कोई परिणाम नहीं मिला تو اس نے صدام دوارا یدھ تھوپ دیا، لیکن ایران کی جنتا نے امریکہ اور اس کے گھٹکوں کی سبھی یوجناؤں کو ناکام بنا دیا، اور آج سامراجوادی شکتیوں کے مقابلے میں ایرانی جنتا پوری شکتی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ آج ایران رکشا کھیتر میں اتنا شکتیشالی ہو گیا ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ ایران کو آنکھیں نہیں دکھائی جا سکتی۔
اسلامی گنتنتر ایران کی سشستر سینا کے پرموکھ جنرل باقری نے کہا ہے کہ اس بات کی انومتی نہیں دی جائے گی کہ پوتر پرتیرکشا کے یادگار کارنامے بھلا دیے جائیں۔ جنرل باقری نے پوتر پرتیرکشا سپتاہ کے اوسر پر سپریم لیڈر سے سینیہ کمانڈروں اور پوتر پرتیرکشا کے سنگرش کرتاؤں کی ملاقات کے دوران کہا کہ پوتر پرتیرکشا نے ایرانی جنتا کی پہچان، سرکشا اور پرتشٹھا و عزت کو گارنٹی دی تھی، اور پوتر پرتیرکشا نے اسلامی کرانتی کے ملیوں کو بہت ہی مضبوط بنا دیا۔ یاد رہے کہ گروار سے ایران میں پوتر پرتیرکشا سپتاہ شروع ہو رہا ہے۔
ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے پشچمی دیشوں کو یہ اسپشٹ کر دیا کہ جب تک انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی ایران کے خلاف سبھی آروپوں کو واپس نہیں لے لیتی، تب تک پرمانو سمجھوتے کو پنرجیوت کرنے کے لیے ایک اور سمجھوتا کرنا سمبھو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپی دیشوں کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امریکی پربھاؤ سے مکت ہیں۔ سنیکٹ راشٹرنگ کی مہا سبھا کے 77ویں وارشک ستر میں بھاگ لینے نیویارک پہنچے اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کی اس دوران کئی دیشوں کے راشٹرادھیکشوں اور ادھیکاریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس بیچ فرانس کے راشٹرپتی ایمینوئل میکرون کے ساتھ بھیٹ وارتا میں راشٹرپتی رئیسی نے یہ اسپشٹ کر دیا کہ ایران اب اپنے شانتیپورن پرمانو کارکرم کے سمبندھ میں کسی بھی سمجھوتے کو تب تک نہیں کرے گا جب تک انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی میں ایران کے خلاف موجود جھوٹے آروپوں کی فائلوں کو بند نہیں کر دیا جاتا۔
ایران میں مہسا امینی نامک ایک لڑکی کی موت کے بعد دیش کی جنتا جہاں اس کی موت کے کارنوں کو جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی، وہیں ودیش میڈیا نے مہسا امینی کی موت کو لے کر جھوٹا پرچار کرنا شروع کر دیا اور عام لوگوں کو سڑکوں پر اترنے کے لیے اکسانے لگا۔ اس بیچ راجدھانی تہران سمیت کئی شہروں میں پردرشن شروع ہو گئے، جس میں شرارتی تتو نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پردرشنوں کو ہنسک روپ دینے کی کوشش کی۔ تہران پولیس کے سوچنا کیندر نے گروار 15 نومبر کو ایک پولیس مکھیالے میں استھانانترت ہونے کے بعد ایک یوتی کے اسوستھ ہونے کی خبر کے پرکاشن کے بعد گھوشنا کی شریمتی مہسا امینی، جنہیں سپشٹیکرن اور پرشکشن کے لیے تہران پولیس کے ایک کیندر میں لایا گیا تھا، پوچھ تاچھ کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد پولیس اور آپاتکالین سیوا کے سہیوگ سے مہسا امینی کو ترنت اسپتال میں استھانانترت کر دیا گیا، لیکن درباگیہ سے ان کی مرتیو ہو گئی۔ اس دکھد گھٹنا کے بعد اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے آنترک منتری احمد وحیدی کو آدیش دیا کہ وہ معاملے کے کارنوں اور ویورنوں کی تتکال اور ساودھانی سے جانچ کریں اور پرینام کی رپورٹ جلد سے جلد پیش کریں۔ ایرانی راشٹرپتی نے مہسا امینی کو اپنی بیٹی بتایا اور اس مدعے کے سبھی پہلوؤں کی جانچ کرنے کا آدیش بھی دیا۔ اس بیچ ایران کی نیائے پالیکا کے پرمکھ نے بھی مرتکہ مہسا امینی کے پریوار کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد اور ادھک سپشٹیکرن کے لیے آگے گہن جانچ کا آشواسن دیا۔ انہوں نے یہ بھی وشواس دلایا کہ جانچ کے پرینام سامنے آنے کے بعد ہی اچت کاروائی کی جائے گی۔ تہران کے مکھیہ نیادیش علی سالئی نے اس کے چکتسک پہلوؤں کی جانچ کرنے کے لیے وشیش ٹیم کے گٹھن کی گھوشنا کی۔ اس کے علاوہ ایران کی سنسد شورائے اسلامی کے ادھیکش محمد باقر قالیباف نے مہسا امینی کی مرتیو کے کارنوں کی جانچ کے لیے دیش کا آنترک معاملوں کا آیوگ اور جانچ ایجنسی کو پاردرشتا کے ساتھ جلد جانچ کے نتیجوں کی گھوشنا کے لیے وشیش نردیش دیے۔ پوتر نگر مسجد میں ایک پولیس ادھیکاری کو سندگدھ لوگوں نے آگ کے حوالے کر دیا، جبکہ ورودھ کر رہے کچھ انیہ لوگوں نے ترنت آگ کو بجھانے کا پریاس کیا۔ وہیں ایران کے اتر میں استھت رش شہر میں کچھ دنگائیوں نے ایک مسجد میں آگ لگا دی، جس کا ایرانی لوگوں کی سنسکرتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح شرارتی تتوں دوارا ہمدان شہر میں ایک امامزادے کے روزے میں آگ لگائے جانے کی گھٹنا گھٹی ہے، جس کو لے کر ایرانی جنتا میں کافی روش دیکھا جا رہا ہے۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی دھمکیوں کے بھے سے تل اویو گیس نکالنا بند کر دے گا۔ اسرائیل کے چینل 13 نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا منتری منڈل حزب اللہ کے مہاسچیو سید حسن نصراللہ کی دھمکیوں سے بھیبیت ہے، اسی لیے وہ وادت فیلڈ سے گیس نہیں نکالے گا۔
یمن کے لوکپریہ جن آندولن انصار اللہ کے نیتا نے 21 ستمبر کی کرانتی کو امریکہ کے ڈرے سہمے ہونے کا کارن بتایا ہے۔ پراپ رپورٹ کے مطابق یمن کے لوکپریہ پرتیرودھ آندولن انصار اللہ کے نیتا عبد الملک برعدین الحوثی نے 21 ستمبر کی کرانتی کے اوسر پر اپنے بھاشن میں کہا کہ یہ کرانتی ایک لوکپریہ کرانتی ہے جس نے امریکہ کو بھیبیت کر دیا تھا۔
نیویارک میں بھارت، یو اے ای، فرانس، और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की एक त्रिपक्षीय बैठक में राफेल लड़ाकू जेट वैश्विक मुद्दों नवाचार और पीपल टू पीपल रिलेशन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैठक के बाद ट्वीट किया कि भारत यूएई और फ्रांस की एक प्रोडक्टिव पहली त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक रणनीतिक भागीदारों और यूएनएससी सदस्यों के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान।
यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी सेना पीछे हट रही है और वहीं यूक्रेन की सेना ने कई ऐसे इलाकों पर वापस नियंत्रण कर लिया है जिस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। इस बीच काला सागर से रूसी पनडुब्बियों के किसी दूसरे स्थान पर जाने की सूचना ने सबको चौंका दिया है। वहीं कई सवाल भी उभर कर सामने आए हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। न्यूयॉर्क में विश्व के नेताओं से ईरान के राष्ट्रपति की भेंटवार्ताएं, प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं और कश्मीर में कुछ धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी, ये हैं दोस्तों हमारी आज की चर्चा के विषय। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि परमाणु समझौते में सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान के हितों की गारंटी है। न्यूयॉर्क से अली रजबी की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं साथी रविश जैदी।
यूरोपीय परिषद के प्रमुख ने न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की है। इस भेंटवार्ता में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को यूरोप द्वारा परमाणु समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं ईरान ने इस मुलाकात में ये साफ कर दिया कि परमाणु समझौते के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यूरोप और अमेरिका की ओर से ईरान के हितों की रक्षा की गारंटी है। राष्ट्रपति रईसी ने इस मुलाकात में सबसे ज्यादा जिस बात पर बल दिया वो ये थी कि इस बात की क्या गारंटी है कि यूरोपीय पक्ष सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश न करे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जिन्होंने अभी 6 दिन पहले ही राष्ट्रपति रईसी से समरकंद में मुलाकात की थी, न्यूयॉर्क में भी वो ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। इस भेंटवार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास और विस्तार, विशेषकर व्यापारिक रिश्तों को लेकर गंभीरता के साथ आगे बढ़ने पर चर्चा की। इस बीच बोलोविया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति रईसी ने देश के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो दोनों देशों के आपसी सहयोग के लिए बनी समिति के कार्यों का जायजा लें। इराक के प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात में राष्ट्रपति रईसी ने सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें के मौके पर इराकी राष्ट्र द्वारा श्रद्धालुओं की बेहतरीन अंदाज में की गई मेजबानी का शुक्रिया अदा किया।
अज़्मिल्लत इराक, अज़्मिल्लत इराक।
वहीं स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात के लिए पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति रईसी के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा की। न्यूयॉर्क के जिस होटल में ईरान के राष्ट्रपति रुके हैं, वहां लगातार उनसे मिलने वाले दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। आज यानी बुधवार और कल यानी गुरुवार को भी राष्ट्रपति रईसी की कई महत्वपूर्ण मुलाकातें होनी हैं। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट।
राष्ट्र संघ की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि अमरीकी प्रतिबंधों का प्रयोग ईरान पर दबाव डालने के लिए एक हथकंडे के रूप में किया जा रहा है। एक समीक्षा लेकर उपस्थित है मोहम्मद मेहदी।
संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर ने ईरानी जनता के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में अपनी आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए ऐलान किया है कि ये प्रतिबंध इस्लामिक क्रांति के आरंभ से थे और यथावत जारी हैं। राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर 17 से 28 मई तक ईरान में मौजूद थी और उन्होंने ईरानी जनता के खिलाफ अमेरिका के एक पक्षीय प्रतिबंधों के प्रभावों की समीक्षा की और अभी आधिकारिक रूप से अपने रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के विभिन्न पहलू हैं, जिनमें से एक यह है कि इन प्रतिबंधों का प्रयोग ईरान पर दबाव डालने के हथकंडे के रूप में किया जा रहा है। गत 44 वर्षों के दौरान अमेरिका ईरान पर दबाव डालने के लिए प्रतिबंधों का प्रयोग एक हथकंडे के रूप में करता रहा है। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी प्रतिबंधों का औचित्य दर्शाने के लिए अमेरिका निराधार दावे करता रहता है और तेहरान के खिलाफ जो अमेरिकी प्रतिबंध हैं, उन्हें इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। रोचक बात यह है कि इस्लामिक क्रांति की सफलता से पहले ईरान क्षेत्र में पश्चिम विशेषकर अमेरिकी हितों का रक्षक था और वो स्वतंत्र होने का दावा भी करता था। उस समय उसके अंदर पश्चिम की नीतियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। ईरानी नीतियों में धर्म की कोई विशेष भूमिका नहीं थी और उस समय जो शाह की सरकार थी उसमें और जानी शासन की अतिक्रमणकारी नीतियों में कोई विरोधाभास नहीं था। परंतु 11 फरवरी 1979 को ईरान की इस्लामी क्रांति के सफल हो जाने के बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने स्वतंत्रता, स्वाधीनता और इज्जत व प्रतिष्ठा को अपनी विदेश नीति का आधार करार दिया और देश के बाहर और भीतर भी धर्म की विशेष भूमिका हो गई। यही नहीं, ईरान ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर आधारित पश्चिम और अमेरिकी नीति को चुनौती दी और वो अतिक्रमणकारी जानी शासन को मान्यता नहीं देता है। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हो और ईरान उसके हाथ से निकल जाए। अमेरिका पश्चिम और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ईरान की इस्लामी क्रांति की जो बातें और मूल्य हैं, वे बड़ी तेज से दुनिया में फैलेंगे। इसलिए उन्होंने इसे रोकने के लिए विभिन्न शैलियाँ अपनाई। इन देशों व शक्तियों ने इस्लामी क्रांति को रोकने के लिए जिन शैलियों का प्रयोग किया, उनमें से एक प्रतिबंध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ईरान के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे इस्लामी क्रांति के आरंभ से हैं और मानवाधिकार, परमाणु ऊर्जा और मिसाइल जैसे विषय ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के बहाने हैं और प्रतिबंधों की मूल वजह ईरान की इस्लामी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का पश्चिम की नीतियों से मेल न खाना है। बहरहाल पश्चिम विशेषकर अमेरिका के एक पक्षीय और गैर कानूनी प्रतिबंधों से ईरान को जहां कुछ नुकसान पहुंचा है, वहीं यही प्रतिबंध विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की ध्यान योग्य प्रगति का कारण भी बने हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। भारत नियंत्रित कश्मीर में कुछ धर्मगुरुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर वहां काफी हंगामा मचा हुआ है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
गाठी के पांच बड़े धार्मिक नेताओं ने यूटी प्रशासन के एलजी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने एलजी पर बल दिया कि वो धार्मिक नेताओं की रिहाई अमल में लाएं, क्योंकि वो शांति के दूत हैं। मुलाकात के तुरंत बाद कारवानी इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना हामी, जिसकी अध्यक्षता में पांच धार्मिक नेताओं ने एलजी से मुलाकात की, ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि हालिया दिनों में जो धार्मिक नेता गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मुश्ताक वीरी और मदनी शामिल हैं, और उसके बाद मौलाना बरकती और अन्य लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उस पर उन्होंने एलजी से मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि धार्मिक नेता शांति के दूत होते हैं और वो अशांति नहीं फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आशा है हमारे जो मुतालबात उनके सामने हमने रखे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है उन्हें फौरी तौर पर रोक कर उनकी रिहाई अमल में लानी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अन्य इश्यूज पर भी बात हुई और शेखुल आलम यूनिवर्सिटी के हवाले से जो आदेश पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ, उस सिलसिले में भी एलजी प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि इस पर वो विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य सोशल इश्यूज पर भी बात हुई और हमने उन पर ये बात बल देकर कही है कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करनी है तो लोगों के हितों में निर्णय लेने होंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेता गैर राजनीतिक होते हैं और हमें हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, परंतु हम ये बात बल देकर कहना चाहते हैं कि लोगों के हित में जो भी काम होगा वो हम करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
बहुत सारी चीज इश्यूज पे बात हुई, शेखुल्लाह रिसर्च यूनिवर्सिटी पे बात हुई, इसी तरीके से जो यहाँ अवलिया कामलीन असलाफ सूफिया उनके ऊपर बात हुई, मदरसा बोर्ड के बारे में बात हुई, इसी तरीके से जो गिरफ्तारियाँ हुई है मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब वगैरह उनके बारे में बात हुई, तो हमने अपने जो अवाम में ये तशकीक इबहाम पाए जाते हैं तो उसके बारे में हमने बात की, हमारे लोगों ने आगाह किया अलजी साहब को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान इस तशवीश को ख़त्म किया जाएगा।
इस बीच एक बार फिर एलजी प्रशासन ने कहा है कि अब यहाँ पर कोई बंद का आह्वान नहीं होता है और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलजी ने कहा कि अब बहुत समय के बाद लोगों में शांति का और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और लोग जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं वो प्रशासनीय है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना उनका मिशन है और जम्मू कश्मीर की तमीर तरक्की, और हमारा ये मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, कार्यक्रम आशा की किरण के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम महामुक्तिदाता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महामुक्तिदाता को सब लोग ही मानते हैं, यहाँ तक कि बहुत से वे लोग जो महामुक्तिदाता को मानते हैं वे आसमानी धर्मों को नहीं मानते। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि महामुक्तिदाता के बारे में शिया मुसलमानों का ये मानना है कि जब महान ईश्वर के आदेश से महामुक्तिदाता का जुहूर होगा तो वो पूरी दुनिया में शांति व सुरक्षा और न्याय स्थापित करेंगे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज तक पूरी दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आए, 1,24,000 पैगंबर आए और कोई भी पूरी दुनिया में न्याय स्थापित नहीं कर पाया, तो ऐसे में महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे न्याय स्थापित कर पाएंगे? उसका एक संक्षिप्त सा जवाब ये है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हर इंसान को उसका अधिकार दिलवाएंगे। जब हर इंसान को उसका अधिकार मिल जाएगा तो कोई किसी से अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा। इसका नतीजा ये होगा कि चारों तरफ शांति ही शांति होगी। हर इंसान दूसरे को अपना समझेगा और वो किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। दोस्तों, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईसाई भी महामुक्तिदाता के आगमन को मानते हैं। उनका मानना यह है कि महामुक्तिदाता सख्त दिल के और हिंसा प्रेमी इंसान होंगे। महामुक्तिदाता के बारे में ईसाइयों का एक गुट वही विचार रखता है जो अतिवादी ज़ायोनी रखते हैं, जबकि आम यहूदियों का ये मानना है कि महामुक्तिदाता सद्गुणों से सुसज्जित होंगे और उनका नाम मसीह होगा। वे ईश्वरीय दूत हजरत दाऊद की संतान में से होंगे। वे जब भी पैदा होंगे उनके अंदर लोगों को मुक्ति दिलाने की क्षमता मौजूद होगी, परंतु महामुक्तिदाता का आगमन उसी समय होगा जब समाज के अंदर उसके आगमन के हालात पैदा हो जाएंगे और ईश्वर उसे इस कार्य की अनुमति देगा। अब तक महामुक्तिदाता के बारे में हमने जो चर्चा की उससे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई आसमानी धर्म नहीं है जिसमें महामुक्तिदाता के आगमन की बात न कही गई हो। ये बात इस बात की सूचक है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महामुक्तिदाता की आस्था इंसान के अंदर आशा की किरण जलाती है। जो इंसान इस बात पर विश्वास रखता है कि आज नहीं कल महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ईश्वर के आदेश से आएंगे और पूरी दुनिया से अत्याचार और अन्याय को समाप्त कर देंगे, तो यही आस्था उस इंसान को ऊर्जा देती है और वो कभी भी निराश नहीं होता है। रोचक बात यह है कि यहूदियों की किताब सिफ्र अशियाई में महामुक्तिदाता की उपमा एक पौधे से दी गई है। उसमें कहा गया है कि वो पैदा हो चुका है और वो हजरत दाऊद के वंश से होगा, जो सद्गुणों से सुसज्जित इंसान होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी उपासक और यहूदी धर्मगुरु ये समझते थे कि हजरत ईसा ही महामुक्तिदाता हैं। परंतु जब उन लोगों को ज्ञात हुआ कि वो तो खुद अपने बाद आने वाले पैगम्बर की शुभ सूचना दे रहे हैं, तब उनकी समझ में आया कि वो हजरत दाऊद की नस्ल से नहीं है। वे अपने विरोधियों व दुश्मनों से जंग करने के बजाय लोगों को नसीहत करते हुए उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद उन्होंने हजरत ईसा से मुंह मोड़ लिया। यही नहीं, जब उन लोगों ने अपनी स्थिति को खतरे में पड़ते देखा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ही वे लोग लड़ बैठे। यहाँ तक कि उन लोगों ने हजरत ईसा की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे उन्होंने उनके रास्ते पर अमल करना जारी रखा। इस प्रकार के लोगों को ईसाई कहा जाता है।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
दोस्तों, यहूदियों की धार्मिक किताब तौरेत में महामुक्तिदाता का वर्णन बारंबार किया गया है। यहूदियों की किताब में जहां बारंबार महामुक्तिदाता की बात कही गई है, वहीं इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि धर्मपरायण और धार्मिक लोग उनके संपर्क में होंगे। दूसरे शब्दों में, जो यहूदी धार्मिक नहीं होंगे वे महामुक्तिदाता से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। इस आधार पर यहूदियों से धार्मिक शिक्षाओं के पालन और उसके प्रति कटिबद्ध रहने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार यहूदियों से बहुत सिफारिश ये की गई है कि वे तौबा अर्थात प्रायश्चित करते रहें और धार्मिक दायित्वों पर अमल करें। इसी प्रकार तौरेत में बल देकर कहा गया है कि यहूदियों को हमेशा महामुक्तिदाता के जहूर की प्रतीक्षा में रहना चाहिए, उन्हें आशा रखनी चाहिए, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। हबक्कू नाम की किताब में हम पढ़ते हैं कि यद्यपि महामुक्तिदाता में आने में देरी होगी, परंतु उसकी प्रतीक्षा में हमें रहना चाहिए, क्योंकि वो अवश्य आएगा और उसके आने में जर्रा बराबर भी देर नहीं होगी। वो समस्त राष्ट्रों और समुदायों को एकजुट कर देगा। इस किताब में महामुक्तिदाता के आने के समय को नहीं बताया गया है और इस बारे में सख्ती से मना भी किया गया है। जिस तरह से दूसरे धर्मों में महामुक्तिदाता के प्रकट होने के कुछ चिन्ह बताए गए हैं, उसी तरह से यहूदी धर्म में भी महामुक्तिदाता के कुछ चिन्ह और शर्तें बताई गई हैं। महामुक्तिदाता के प्रकट होने की एक शर्त यह है कि वो उस समय प्रकट होगा जब दुनिया में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा। ये वो चीज है जिसका उल्लेख अधिकांश धर्मों की धार्मिक किताबों में मिलता है। इसी प्रकार महामुक्तिदाता के आने की एक निशानी ये भी है कि वो उस समय आएगा जब दुनिया में अत्याचार, भ्रष्टाचार, युद्ध, बीमारी और निर्धनता व्याप्त होगी। चारों ओर पाप और हिंसा आम होगी। यहूदियों की आस्था के अनुसार उस समय यहूदी फिलिस्तीन में एकत्रित हो जाएंगे और दोबारा सुलेमान उपासना स्थल का निर्माण करेंगे और अंत में याजूज और माजूज नाम के बहुत ही दुष्ट व्यक्ति भारी सेना के साथ बैतुल मुकद्दस के निकट आ जाएंगे। वहां पर घमासान लड़ाई होगी जो 7 वर्षों तक जारी रहेगी। इस लड़ाई में दुनिया की 1/3 आबादी समाप्त हो जाएगी। यहूदियों की आस्था के अनुसार ईश्वर के हस्तक्षेप से अंत में याजूज और माजूज की सेना पराजित होगी और ये वो वक्त होगा जब ना मसीह बल्कि मसीह की विश्वव्यापी सरकार आरंभ होगी। यहूदियों की आस्था के अनुसार महामुक्तिदाता केवल यहूदी जाति को ही मुक्ति दिलाएगा और दूसरे धर्मों के जो लोग जीवित बच जाएंगे उनके बारे में महामुक्तिदाता फैसला करेगा। जो पापी होंगे उन्हें नरक में भेजा जाएगा। यहूदियों की आस्था के अनुसार मसीह की विश्वव्यापी सरकार के काल में पूरी दुनिया हर प्रकार की भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुकंपाओं से भरी होगी और उसे केवल यहूदी ही लाभ उठा पाएंगे। दूसरे धर्मों के जो मानने वाले होंगे वे सब यहूदियों की सेवा करेंगे। उस समय जो भौतिक नियमतें होंगी वो बहुत अधिक और कल्पना से परे होंगी। यहूदियों की किताब तौरेत में ये भी आया है कि नहर के दोनों किनारे विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे जिनके पत्ते सूखेंगे नहीं और उनके फल कभी भी खत्म नहीं होंगे। हर महीने ताज़ा फल वहां पर उगेंगे क्योंकि नहर में जो पानी आएगा वो पवित्र स्थान से जारी हुआ होगा। फलों को लोग खाएंगे और उनके पत्तों से बीमारियों का उपचार करेंगे। महामुक्तिदाता के काल में लोगों में पूरी तरह दोस्ती, शांति और सुरक्षा होगी। इस प्रकार से कि शेर और बकरी एक साथ रहेंगे और एक घाट से पानी पिएंगे। इसी प्रकार यहूदियों की किताब में बल देकर कहा गया है कि महामुक्तिदाता के काल में न्याय का बोलबाला होगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, उस जमाने में कोई पाप नहीं करेगा, लोग महान ईश्वर की उपासना करेंगे, समस्त बुत तोड़ दिए जाएंगे और बुरी आत्माओं का अंत हो जाएगा। चूंकि यहूदियों के लिए महामुक्तिदाता का जहूर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में जायोनिज्म नाम के एक अतिवादी गुट का गठन किया। इस गुट ने अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ पश्चिमी व यूरोपीय देशों की सहायता से फिलिस्तीनियों की मातृभूमि के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां के मूल निवासियों की हत्याएं करना आरंभ कर दी। उन्होंने 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से भगा दिया। इस समय बेघर फिलिस्तीनी दूसरे देशों में शरणार्थियों का जीवन गुजार रहे हैं। ज़ायोनी शासन इन अत्याचारग्रस्त फिलिस्तीनियों को स्वदेश वापसी की भी अनुमति नहीं दे रहा है और मानवाधिकारों के समस्त समर्थक मूल दर्शक बने हुए हैं। जिन 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को ज़ायोनियों और इसराइल ने उनकी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया है, उनकी ज़मीनों, मकानों और बागों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। रोचक बात यह है कि अगर कोई पश्चिमी, यूरोपीय या इन देशों का समर्थक मारा जाता है तो इसका आरोप सबसे पहले मुसलमानों पर मढ़ने की कोशिश की जाती है, इनके हथियारों को आतंकवादी बताने की चेष्टा की जाती है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। परंतु ज़ायोनी शासन और ज़ायोनियों ने 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल बाहर कर दिया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और 73 वर्षों से अधिक समय से इसराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार और हत्याओं का बाजार गर्म कर रखा है। आज तक कोई भी पश्चिमी देश, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार भी ज़ायोनियों या इसराइल को आतंकवादी नहीं कहा है, जबकि ये देश स्वयं को मानवाधिकारों का रक्षक बताते हैं। अतिवादी ज़ायोनियों का मानना है कि ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, दूसरों को हमारी सेवा के लिए पैदा किया गया है और दूसरों के पास जो कुछ है वो वास्तव में हमारा अपना है। अतिवादी ज़ायोनी किसी गैर ज़ायोनी से कोई भी चीज़ ले लें या छीन लें, ये उनका अधिकार है, ये अत्याचार नहीं है, जबकि ये बात वास्तविकता से बिल्कुल ही विपरीत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशा की किरण, जिसे लेकर उपस्थित थे हमारे साथी कायम रिज़वी। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और गायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ईरान की अर्थव्यवस्था में नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन के प्रभावों का जायजा लेंगे।
दोस्तों, नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और सपना है। इस पर ईरान में बड़ी लगन से काम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर देश की इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड हो जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन की क्षमता में विस्तार होगा। तेल की आय पर निर्भरता ईरान की इकोनॉमी के क्षेत्र की बुरी विरासत है। कई साल से इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई जोर दे रहे हैं कि देश के अधिकारी इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड बनाएं, अर्थव्यवस्था में तेल की भूमिका कम की जाए और इसकी जगह वैकल्पिक स्रोतों और संसाधनों को इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके अच्छे विकल्प तलाशे जा सकते हैं। इस रास्ते पर चलने का नतीजा ये होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में नए नए कारखाने और हर सतह की फैक्ट्रियां खुलेंगी, जिनसे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने 24 जुलाई 2012 को कहा था कि अगर हम अपनी अन्य आर्थिक गतिविधियों से हासिल होने वाली आमदनी को तेल से होने वाली आय का विकल्प बना सकें तो समझिए कि आर्थिक मैदान में हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आज नॉलेज बेस्ड उद्योग वो चीज़ है जो इस मैदान में बहुत मददगार साबित हो सकता है। देश के भीतर अनेक प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं जिनकी मदद से इस शून्य को भरा जा सकता है।
ये सच्चाई है कि हालिया दशकों में देश के औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल और तकनीक का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अन्य देशों से आयात करके यहाँ लाया जा रहा है। हालिया वर्षों में इन उद्योगों में कच्चे माल और तकनीक दोनों मामलों में समस्याओं का सामना रहा है। इन उद्योगों की समस्या ये है कि उन्हें अन्य देशों से आयात किए जाने वाले कच्चे माल और तकनीक की ज़रूरत है और सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उनकी प्रोडक्शन लाइन समस्या में पड़ी हुई है। इनमें कुछ कारखाने तो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जबकि कुछ कारखाने ऐसे हैं जो चल तो रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम उत्पाद तैयार कर पा रहे हैं। कारखानों के बंद होने का बुरा असर ये हुआ है कि देश की पैदावार क्षमता का भाग खत्म हो रहा है। अब अगर नॉलेज बेस्ड कंपनियों के जरिए इन उद्योगों की जरूरतें पूरी हो जाएं, तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है।
नॉलेज बेस्ड कंपनियां अपना काम करने के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में पैदावारी गतिविधियों को रफ्तार दे सकती है। इसकी एक मिसाल तेल और गैस के क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का विस्तार और कच्चे माल के निर्यात में कमी लाना है। इस्लामिक क्रांति के नेता इस बारे में कहते हैं कि अगर ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े अन्य संबंधित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसी तरह गैस जैसे जुड़े उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, खनिज पदार्थों से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो देश को कच्चा माल बेचने की हालत से निकाला जा सकता है। तकनीक का जहां तक सवाल है तो इसमें विस्तार की क्षमता होती है। इंसान तकनीक के मैदान में जितनी तरक्की करता जाता है नए नए क्षितिज उसके सामने खुलते जाते हैं। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि नॉलेज बेस्ड कंपनियों की वजह से रोजगार कम होगा, बल्कि इससे नए क्षेत्र और नए क्षितिज खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
नॉलेज बेस्ड कंपनियों की जहां दूसरी अनेक उपयोगिताएं और उपलब्धियां हैं, वहीं इनका एक बड़ा योगदान ये है कि इनसे उन पाबंदियों को बेअसर बनाया जा सकता है जो पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका ने ईरान पर लगा रखी हैं। नॉलेज बेस्ड कंपनियों की खासियत ये है कि वे बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इनमें आम जनता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर अर्थव्यवस्था में इन कंपनियों की भूमिका बढ़ जाए और इनके उत्पादों का देश की GDP में अच्छा योगदान होने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में कभी पैदा होने वाली उथल पुथल से भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, बल्कि बड़े झटके सहन कर ले जाने की उसमें क्षमता पैदा हो जाती है। नॉलेज बेस्ड कंपनियाँ ज्ञान विज्ञान के मैदान में सक्रिय रहती हैं और ये मैदान ऐसा है कि इसमें पाबंदियां लगाना लगभग निरर्थक होता है, यानी पाबंदियों के जरिए इस मैदान में किसी को रोक पाना कठिन हो जाता है। नॉलेज बेस्ड कंपनियों से जिस तरह की ताकत देश को हासिल होती है उसे पाबंदियां लगाकर कम करना संभव नहीं होता। ये कंपनियां देश के दूसरे उद्योगों पर भी अमेरिका की ओर से लगाई गई पाबंदियों को नाकाम कर सकती हैं।
इस्लामी क्रांति के नेता ने 8 साल पहले अपने भाषण में कहा था कि अगर अल्पावधि के पहले से देखा जाए तब भी अगर विज्ञान और तकनीक के मैदान में प्रगति होती है तो पाबंदियों से निपटने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। इस समय पाबंदियों का मसला ईरान के भीतर आम जन के स्तर पर भी सबसे महत्वपूर्ण बहस का विषय है। इस मसले को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति हासिल करके हल किया जा सकता है। अगर दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी स्थिति यह है कि दुश्मन पाबंदियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इनकी मदद से ईरान की जनता का अपमान करना चाहता है। इनकी मदद से आम जनता के जीवन को कठिनाइयों में झोंक देने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद ईरानी कौम का अपमान करना है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पाबंदियों के विषय को इतना ज़्यादा महत्व न दिया जाए। अगर हम देश के महत्वपूर्ण विषयों को विज्ञान और तकनीक की नज़र से हल करने की कोशिश करें तो इन्हें बखूबी हल किया जा सकता है।
इस्लामी क्रांति के नेता की इस बात पर हमेशा ताकीद रहती है कि देश के भीतर उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। उनका कहना है कि नीतियां इस तरह की बननी चाहिए जिनसे देश के भीतर उत्पादन को बढ़ावा मिले। अगर नीतियों और कानूनों में कहीं कुछ ऐसी खामी है जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है तो उसे ज़रूर दूर किया जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि उत्पादन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि साम्राज्यवादी ताकतों की शुरू से ये कोशिश रही है कि ईरान के भीतर उत्पादन ठप पड़ जाए। ये दुश्मन का मंसूबा था। ये पाबंदियां और ये सारी बहसें इसलिए थीं कि देश के भीतर उत्पादन पूरी तरह से रुक जाए और देश मोहताज होकर रह जाए। दूसरों से आस लगाने पर वो मजबूर हो जाए। आर्थिक दबाव डालने का आखिरी लक्ष्य यही है कि देश के भीतर उत्पादन से जुड़ी सारी गतिविधियां ठप पड़ जाएं। जब किसी देश का उत्पादन प्रभावित हो जाता है तो काम और रोजगार भी प्रभावित होता है।
नॉलेज बेस्ड कंपनियों का एक फ़ायदा यह है कि अगर इनकी सही तरीके से सक्रिय कर दिया जाए तो जो कारखाने और उद्योग बंद पड़े हैं या अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं वो दोबारा चल पड़ेंगे और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन शुरू कर देंगे। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी मदद है। इस्लामी इंकलाब के नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और ईरान की अर्थव्यवस्था में एक फ़र्क यह है कि ईरान में मझोले और निचले स्तर के बहुत से कारखाने और उत्पादन इकाइयां हैं जो बंद पड़ी हैं या अपनी क्षमता से कम काम कर रही हैं। अब अगर कंपनियों को नॉलेज बेस बनाने की दिशा में काम होता है तो संभव है कि इन कंपनियों में भी बदलाव आए और इन्हें नॉलेज बेस बनाकर दोबारा चालू कर दिया जाए। इस तरह बंद पड़े कारखाने दोबारा चल पड़ेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी अपनी भूमिका निभा सकेंगे।
अब सवाल यह है कि अगर अर्थव्यवस्था को नॉलेज बेस्ड बनाने पर तवज्जो न दी जाए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके जवाब में ये कहना चाहिए कि हमने इससे पहले इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड बनाने के जो फ़ायदे गिनवाए वो सब हाथ से निकल जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ एक समस्या ये भी होगी कि लोगों की नाराज़गी बढ़ेगी। लोग राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय उत्पादों का समर्थन करने में फिर रुचि नहीं दिखाएंगे। ये भी मानना पड़ेगा कि ईरान ही नहीं सारी दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सी कंपनियां, यहां तक कि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना आकार और स्वरूप बदल रही हैं। इन कंपनियों ने भी नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रखा है। इसकी वजह यह है कि अगर ये कंपनियां इस पहलू पर काम न करें तो विश्व स्तर पर जारी प्रतिस्पर्धा में उनका बाकी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अगर कंपनियां अपना प्रोडक्शन नॉलेज बेस कर लेती हैं तो इसे वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा में बने रहने की क्षमता व्यापक रूप से बढ़ जाती है। यही वजह है कि ये कंपनियां इस विषय पर खास ध्यान दे रही हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने बजट निर्धारित कर रखा है। हालिया कई साल से ये देखने में आ रहा है कि इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता नॉलेज बेस्ड कंपनियों और नॉलेज बेस्ड उत्पादन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इसका असर भी साफ दिखाई देने लगा है। सरकार और अलग अलग संस्थाएं व मंत्रालय इस लक्ष्य को सामने रखकर नीतियां बना रहे हैं जिनसे नॉलेज बेस्ड कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। सुप्रीम लीडर का कहना है कि दुश्मन भी जानता है कि ईरान को आंखें नहीं दिखाई जा सकती। राष्ट्रपति का कहना है कि वार्ता और साजिश तेहरान को स्वीकार नहीं है। ईरान में होने वाले हिंसक प्रदर्शनों की सच्चाई सामने आने लगी है और भारत, यूएई और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है pasttoday.com/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें। खुदा हाफिज। Thank you.